ओलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं, श्री ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र महर्षि अत्रि और महर्षि अत्रि से जन्म हुआ चंद्रमा का, चंद्रमा से जन्म हुआ बुध का, बुध से जन्म हुआ पुरुरवा का और आगे ये वंश परंपरा बहुत आगे तक बढ़ रही है। चंद्रवंश और सूर्यवंश, सूर्यवंश है थोड़ा बुद्धि प्रधान और चंद्रवंश है मन प्रधान, इसलिए स्वयं चंद्रमा के बारे में भी जो नवम स्कंध में वर्णन किया गया है, बुध का जन्म किस प्रकार से हुआ वो सब प्रायः कथा के जो श्रोता हैं जानते ही हैं। चंद्रवंश का भी प्राय इतना ही है, थोड़ा मन प्रधान लीलाएं इस वंश की हैं और अनेक अच्छे अच्छे राजा भी इस वंश में हुए, रंथदेव जैसे महापुरुष हुए, ययाति के पुत्र महाराज यदु जो अपने किसी भी तरह से अपने धर्म का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके दंड में उनको राज्य से वंचित भी होना पड़ा, कहते हैं ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं, लेकिन मूल में चंद्रवंश का यही है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अनेक राजाओं का वर्णन करते हुए, वर्णयामी महापुण्यम सर्व पाप हरम नृणाम यदोर वंशम नरह श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। बोले सर्व पाप हरम नृणाम महापुण्यम यदोर वंशम वर्णयामी, यदवंश का जो श्रवण कर ले उसके जीवन के सारे पाप का संताप नष्ट हो जाते हैं। बोले यदवंश का श्रवण करने से, बोले यदवंश का श्री कृष्ण के वंश का चंद्रवंश का आगे नाम चल करके यदवंश पड़ गया, क्यों? यदु एक विशेष प्रकार के महापुरुष हुए, यदु के पिता ययाति ने उनसे आयु मांगी, अपना बुढ़ापा उनको देना चाहते थे, उनसे युवा अवस्था लेना चाहते थे, लेकिन महाराज यदु ने उसको उचित ना समझ करके नहीं दिया, भले उसका दंड उनको भोगना पड़ा। तो सज्जनों यदु ऐसे महापुरुष हैं जो अपने जीवन में ईश्वर के आधार पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बोले सुनने का अभिप्राय ये है, अगर ईश्वर के आधार पर हमारा जीवन चलने लग जाए, भले माता पिता का भी विरोध करना पड़े, अगर कोई माता पिता कोई गुरु ईश्वर के विरुद्ध काम करने को कहता है तो उसका विरोध करने में भी कोई नुकसान नहीं। और तो तुलसीदास जी महाराज ने भी मीराबाई को लिखा था, जाके प्रिय नाम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही। बोले पंडित राम किंकर जी महाराज एक घटना सुनाते हैं, बोले एक जगह हम कथा करने गए तो जो आयोजक थे पिता उन्होंने दोहा दिया, अनुचित उचित विचार तज जे पालन पितु बहन ए भाजन सुख सुजस के बसन अमरपत है। बोले कथा प्रारंभ हो गई, एक दो दिन कथा चली, पिता की बड़ी महिमा गाई गई, उनके दो तीन बेटे थे वो मिलकर के एक दिन आए पंडित जी महाराज के पास, उन्होंने कहा महाराज आप जानते हैं कि इन्होंने ये दोहा आपको क्यों दिया है कथा के लिए? बोले स्वाभाविक दिया होगा, हमको तो कुछ पता नहीं। बोले हमारे पिताजी की अवस्था 65 वर्ष की है और इस अवस्था में ये दूसरा विवाह करना चाहते हैं, हम लोग इनको मना करते हैं तो ये आपके मुख से उसको प्रमाणित करवाना चाहते हैं कि पिता कुछ भी कहे उसको मान लेना चाहिए, इसलिए आपको ये कथा के लिए दोहा दिया गया। सज्जनों तो ऐसा यदि पिता हो उसकी आज्ञा को बेटा कैसे मानेगा, ऐसे थे महाराज यदु, बड़ा उनका आगे चल करके यश हुआ और चंद्रवंश को ही यदवंश के नाम से जाना जाने लग गया। इसी वंश में आगे चल करके महाराज वसुदेव जी महाराज हुए और वसुदेव जी की अनेक रानियां थी, उन अनेक रानियों में महाराज जो ये बलराम जी महाराज हैं इनका वर्णन देवकी के पुत्र के रूप में भी किया गया और रोहिणी के पुत्र के रूप में भी किया गया। देवकी के अनेक बेटे हुए, कीर्तिमान, सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन, भद्र, संकर्षण और अष्टमस्तो तयोराशी स्वयमेव हरिहितलो, बोले उनके आठवें जो बेटे थे वही साक्षात परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और देवकी वसुदेव की ही कन्या का नाम था सुभद्रा, जो श्री कृष्ण की सगी बनी थी। सुभद्रा का महाभागा तव राजन पिता मही। बोले भगवान श्री कृष्ण अवतार क्यों लिए? आपको श्लोक प्रायः आपको याद हो गए होंगे क्योंकि महाभारत सीरियल में वो प्रायः बोले जाते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्टतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोले यही उद्देश्य भगवान के अवतार का, क्या? साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना, इसलिए भगवान का अवतार होता है। यहाँ पर एक उद्देश्य और बताया श्रीमद् भागवत में, क्या? कलौ जनिष्यमाणानां दुःख शोक तमोनुदम अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यम जतनोत्यस। बोले कलयुग के लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर के ऐसी ऐसी लीलाएं की कि आज भी कलयुग में लोग उनका अनुकरण करके, उनका दर्शन करके, उनका अध्ययन करके, उनका श्रवण करके अपने जीवन को श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं और जीवन के लक्ष्य कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये भी एक उद्देश्य है भगवान के अवतार का। जैसे आज जैसे आप लोग बिल्कुल तैयार बैठे हो, किस लिए? जैसे श्री कृष्ण आने ही वाले, ऐसे तैयार बैठे हो, क्यों? यही भगवान के अवतार का उद्देश्य है। सारी तैयारी होती है, सारा आनंद होता है। भुज पंडित राम शंकर जी महाराज सुनाते, बड़े अयोध्या में एक भक्त एक बार राम जन्मोत्सव मना रहा था। किसी विनोदी व्यक्ति ने जाकर के कहा कि महाराज दशरथ ने जितने विशाल रूप में जन्मोत्सव मनाया था, आप तो उतने बड़े रूप में नहीं मना सकते, तो छोटे रूप में उनका जन्मोत्सव मना के उनका सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? भक्त ने कहा, दशरथ जी ने बहुत बड़े रूप में बनाया था, मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें एक कमी रह गई थी। अरे, दशरथ जी के जन्मोत्सव में कमी रह गई थी? बोले क्या कमी रह गई थी? बोले उस जन्मोत्सव में मैं तो था ही नहीं, जब मैं नहीं था तो मेरे लिए उस जन्मोत्सव का क्या लाभ हुआ, आनंद हुआ? आज आप लोग देख रहे हैं, ऐसे सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, माने कथा भी उतना मन से नहीं सुनते जितनी प्रतीक्षा ठाकुर जी के आने की हो रही है। सोच रहे होंगे स्वामी जी पता नहीं कब कथा पूरी करेंगे, ठाकुर जी का जन्मोत्सव कब प्रारंभ होगा, ऐसे प्रतीक्षा करके बैठे हैं महाराज। और आप देखें प्रत्यक्ष रूप में, बाकी दिनों में इतनी उपस्थिति नहीं होती कहीं भी कथा में जितनी उपस्थिति जन्मोत्सव के दिन होती है। तो माने रहस्य तो वही है ना, जीवन का लक्ष्य तो वही है ना भाई। कहते हैं ये भी भगवान के अवतार का एक प्रयोजन। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी कुशलता के साथ दो श्लोकों में कृष्ण लीलाओं का वर्णन कर दिया। जातो गतः पितृगृहा ब्रज मेधितार्थः हत्वा रिपुं सुखशतान कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषा कृतभिः समेदे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन्जनेषु। बोले मथुरा में जिनका जन्म हुआ और नंदोत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? गोकुल में। ऐसा अवतार आपने देखा है, जन्म कहीं ले और जन्मोत्सव कहीं मनाया गया। थोड़े दिन तक गोकुल में रहे, फिर वृंदावन चले गए। वृंदावन में 11 वर्ष की अवस्था से फिर मथुरा आ गए, मामा कंस का उद्धार किया, माता पिता को छुड़ाया और फिर द्वारिका चले गए। अनेक विवाह किए, महाभारत का युद्ध करवा करके पृथ्वी का भार उतारा, अंत में उद्धव को ज्ञान का उपदेश दिया और अपने वंश का भी संहार करके पृथ्वी का काम पूर्ण करके अपने गोलोक धाम को चले गए। महाराज सारी कृष्ण लीला बड़े संक्षेप में कह दिया। यहीं पर नौम स्कंध का विश्राम होता है, दशम स्कंध यहाँ से प्रारंभ होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया प्रारंभ में, क्या? कथित वंश विस्तारा भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। महाराज आपने राजाओं की कथा को बहुत विस्तार से सुनाई, इसके बेटे ये, इसके बेटे ये, इसके बेटे ये। हमारे ठाकुर ये है सज्जनों प्रेम, श्री कृष्ण कथा का प्रारंभ हुआ तो आपने बहुत जल्दी ही दो श्लोकों में पूर्ण कर दिया, ये हमको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। विस्तार से सुनाइए भगवान श्री कृष्ण की कथा, आपका श्री कृष्ण से क्या संबंध राजन? बोले अगर श्री कृष्ण रक्षा नहीं करते तो मेरा ये जीवन ही नहीं होता, गर्भ में मेरी रक्षा किए थे प्रभु, मेरा तो जीवन का संबंध, हमारे परिवार के एक एक सदस्य का संबंध श्री कृष्ण से है, द्रौपदी जी का, पांचों पांडवों का, सुभद्रा का, उत्तरा का, कौन ऐसा हमारे परिवार का सदस्य है जो श्री कृष्ण से नहीं जुड़ा है? महाभारत जैसे महाघोर सागर में मार्ग पार करने के लिए जहाँ पर भीष्म पितामह इत्यादि बड़े बड़े त्रिमंगलों का निवास था, श्री कृष्ण रूपी नौका और मार्ग खेलने वाला पतवार नहीं होता तो कौन पार लगाता? ऐसे मेरे प्रभु श्याम सुंदर, ये प्रेम जो है ना महाराज, एक महात्मा कहते थे कैसे पता लगे कि श्री कृष्ण से प्रेम है कि नहीं? बोले श्री कृष्ण का नाम लेते ही क्या श्री कृष्ण के स्वरूप और लीला आंखों के सामने आ जाते हैं क्या? जैसे आपके बेटे का कोई नाम लेता है तो बेटे के अनुरूप रूप आपके आंखों के सामने आने लगते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को आपने जीवन में कोई रिश्ता जोड़ा है क्या, कोई संबंध जोड़ा है क्या? यदि जोड़े होंगे तो आपके जीवन में श्री कृष्ण का नाम लेते ही आपके महाराज मुख आकृति बदल जाएगी, आपके आंखों से अश्रुपात हो सकता है, शरीर में रोमांच हो सकता है, ये श्री कृष्ण प्रेमी का लक्षण। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं विस्तार से सुनाई। सुखदेव जी ने कहा राजन चार दिन हो गए तुमको कथा सुनते सुनते, न तो तुमने कुछ खाया न जल पिया, अब अगर कृष्ण कथा प्रारंभ होगी तो तीन चार दिन और चलेगी, पहले कुछ खा लो, थोड़ा सा कुछ बाल भोग कर लो, अल्पाहार कर लो। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु आपके श्री मुख से श्री कृष्ण कथामृत का जो क्षरण हो रहा है उसका पान करते करते मुझको न तो पिपासा लगी है न सुबह लगी है, ऐसी तृप्ति हो रही है सज्जनों। स्वामी श्री गोविंदानंद जी महाराज सुनाते हैं, बोले एक बार विनोबा भावे से बहुत कम खाते थे, डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्होंने कहा आपको जितनी कैलोरी की जरूरत है उतना भी आप नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं आप। कितना सुंदर जवाब दिया, बोले डॉक्टर तुम हमारे भोजन की कैलोरी गिनते हो ना, हमारे भजन से कितनी कैलोरी बनती है डॉक्टर ये तुम कैसे गिन सकते हो? भजन से भी एक शरीर में रसायन बनता है, भजन से भी एक शरीर में ताकत आती है, और आज आप लोग जानते हैं आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानने लग गए हैं। महाराज बालक को सोते समय या स्वप्न की अवस्था में, सोने की अवस्था में भी कोई ना कोई अच्छा संगीत चला करके छोड़ देते हैं, उसका भी प्रभाव शरीर पर पड़ता है। अच्छी बात सुनेंगे, भजन करेंगे, मन अगर भगवान में लगेगा, आपके शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है महाराज। सज्जनों राजा परीक्षित ने कहा महाराज भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी, आप कृष्ण कथा सुनाइए।